ओम शांति। आप सब के तपस्या के फल स्वरूप यहां का वातावरण इतना सुंदर, शक्तिशाली और सुखद अनुभव कराने वाला बना हुआ है कि हॉल में आते ही जैसा अभी की क्लास का विषय है, लाइट हाउस और माइट हाउस का अनुभव, सो इस संगठित योग के फलस्वरूप उसका प्रैक्टिकल अनुभव करवा रहा है। आने से ही इतना अच्छा लगता कि बातचीत करने को मन नहीं। तो आप सब बाबा के अनन्य सिखिल दे भाई व बहने अवश्य ऐसी योग्यता रखते हैं जिनको तपस्या वर्ष के अंतर्गत इस तपोभूमि में आकर स्वयं तपस्वी स्वरूप का और अधिक गहराई का अनुभव करने का और साथ साथ इस तपस्या कुंड के वातावरण को और पावरफुल बनाने का सहयोग देने का सुअवसर मिला है। इसी हिसाब से एक तरफ हम कहें वाह बाबा, और साथ में अपने भाग्य को भी सामने रखते राजयोगी आत्माएं वाह रे मैं, ये भी सोचना, क्योंकि जब हम लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति के अनुभव की बात करते हैं कि कैसे वो स्थिति बने और कायम रहे, तो उसमें एक तरफ हमारी स्मृति क्या रहे जो उस अनुभव में आए, क्योंकि अभ्यास जब करते हैं विशेष और ऐसे सारा दिन का अभ्यास, तो सारे दिन के अभ्यास में संकल्प तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं सोचेंगे कि हम आत्मा ज्योति स्वरूप हैं, बिंदु स्वरूप हैं, और सारा टाइम सोचते ही नहीं रहेंगे, लेकिन एक अपने ही स्वरूप की अनुभूति जो हम सचमुच हैं, ज्योति स्वरूप आत्मा है, पहले दिन से सुना है, और वो संकल्प करते ही एक तो लाइट स्वरूप और दूसरी लाइट फीलिंग चाहिए, हल्कापन, मानसिक हल्कापन। भारी होंगे तो लाइट भी नहीं अनुभव में, लाइट स्वरूप का अनुभव भी नहीं, और जो सच्चा सच्चा लाइट हाउस है, स्वीट होम है, वहां तक भी ना पहुंच पाएंगे। और जब तक वहां नहीं पहुंच पाएंगे तो स्वयं हम इतने शक्तिशाली लाइट हाउस बन जाएं वो भी नहीं होगा। इसलिए किसी भी समय अभ्यास करते हैं, चाहे सुबह को चाहे शाम को। यूं तो बाबा ने कहा है कि आप चलते फिरते लाइट हाउस, चैतन्य लाइट हाउस हो, चलते फिरते म्यूजियम हो, तो वो स्मृति निरंतर बनाने के लिए ऐसा विशेष अभ्यास जब होता है और ऐसे विशेष अभ्यास में जो विशेष अनुभव होते हैं वो हमें मदद करते हैं कि हम चलते फिरते भी लाइट हाउस बन सके। क्योंकि काफी समय मिलता है एक तरफ इस स्थिति के बारे में विचार सागर मंथन करने का और उसके अनुसार उसका स्वरूप बन के बैठने का, और जितना उस स्वरूप में स्थित होंगे उतना उसका अनुभव होगा। अनुभव के फल स्वरूप खुशी होगी और हल्के होंगे और आपका जो लाइट का स्वरूप मल्टीप्लाई करेगा। और इसके साथ में अकेली तो लाइट या ज्योति बिंदु उस लाइट हाउस में नहीं, लेकिन साथ में सर्वशक्तिवान बाप भी है। तो एक तरफ अपना स्वरूप, दूसरी तरफ बाबा सामने कहो साथ कहो, उनको भी अच्छी तरह से समीप से अनुभव करते हैं और बहुत दिल में जैसे एक खुशी और जैसे गुदगुदी होती, इतना मीठा लगता है वो अनुभव। जैसा बाबा के गुणों का एक वर्णन होता है, सागर का, स्वीटनेस का, लाइट का, शक्ति का, तो ये सोचते ही कि बाबा हम आपके साथ हैं, किसके साथ हैं, और उसमें खो जाते हैं। किसके साथ हैं? आपके साथ हैं। आप कौन हैं? क्या हैं? आपका स्वरूप हमारे सामने इस समय क्या है? तो उससे और हल्कापन आता है, क्योंकि इसमें सब तरफ से मन हट जाता है, संकल्प एक बाबा पर केंद्रित हो जाते हैं। और उसके फलस्वरूप जो प्राप्ति चाहते हैं, सो अनुभूति और शिव बाबा की अनुभूति कहो, वो दोनों साथ साथ होने के फलस्वरूप मन में बहुत प्रसन्नता की लहर आ जाती, खुशी की लहर आ जाती, संतुष्टता की लहर आ जाती, और धीरे धीरे जितना ही बाबा को साथ देखते रहते हैं मन ही मन में, और उसका एक एप्रिसिएशन कहो, उसका एक अपने ही दिल में उसकी कीमत को जानते हैं। जैसे एक कहते हैं भाई हीरे की कीमत, तो ज्ञान के अंदर, योग के अंदर भी सबसे अमूल्य जो अनुभूति है वो है ही साइलेंस में टोटल अपने स्वरूप की और बाबा की अनुभूति। उसमें सब बातें खत्म हो जाती, न पास्ट उसकी कोई बोझ की चिंता, न फ्यूचर के बारे में इतना क्या कहें उसको फिक्र रहता, क्योंकि दिल में आता है बाबा पाना था सो पा लिया, आप मिल गए उसमें सब कुछ आ गया। और जैसे ये सोचते हैं दिल में तो और हल्कापन आएगा, फिर इसकी स्मृति बाबा के पास ही वर्णन करते हैं कि सचमुच मैं कितना लाइट स्वरूप, कितना लाइट हूं। आप सदा इस स्वरूप में, हम लाइट होते हुए भी जैसे दीपक मटके में रख दो तो मिट्टी चारों तरफ आ जाती, उसके सृष्टि चक्र के अंदर अनेक जन्म लेते, हमारी स्मृति में ये स्वरूप सदा न रहा। अब फिर से आपने आकर स्मृति दिलाई है। ऐसे बाबा से रूहान भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस स्मृति को और गहराई में लेते जाते हैं। और अल्टीमेटली आखिरी कहां पहुंचते हैं, मन में आता है अब इस स्वरूप में ही बैठे रहे। जब स्मृति आ गई, अनुभव में आ गए, अब इसी अनुभूति में। सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती अनुभूति में जब पहुंच गए, फिर और क्या सोचना। कोई कोई बहुत बाबा जिसको कहते हैं तीव्र भक्ति करने वाले भक्त भी कहते हैं, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए। तो बच्चे क्या कहेंगे। बाबा कभी कभी साकार मुरलियों के अंदर पड़ेंगे, बहुत स्वर्ग की महिमा करके, बच्चे बाप से क्या प्राप्ति होती है। 21 जन्म के लिए डबल ताजधारी बनेंगे, स्वर्ग के महल होंगे, हीरे ज्वारात के जड़त महल होंगे, अनेक बार ड्रेस चेंज करेंगे, ऐसे गहने पहनेंगे, सब कह करके बाप से ऐसा वर्षा तुमको मिलता है। तो ऐसा वर्षा प्राप्त कराने वाले बाप को कितना दिल से, कितना प्यार से आपको याद करना चाहिए। बात फिर वही ले आते थे और कभी कभी कहते थे वो तो मिलना ही है, उसमें क्या है। वर्तमान में तो अभी बाबा का जो अतींद्रिय सुख है, बाप की प्राप्ति का, बाप के साथ का, उसके अनुभव में आओ। उस बात को सामने रखते और ये इतना सुंदर अनुभव होता कि मन होगा बार बार इसमें जाए। तो जितना जितना इस अनुभव में जाएंगे हल्कापन आता जाएगा। क्यों? स्वतः ही सर्वशक्तिवान की शक्ति आत्मा पर काम कर रही है। पुराना हिसाब किताब स्वतः ही खत्म हो रहा है, आत्मा की चमक स्वतः ही बढ़ती जा रही है। तो जितना हिसाब किताब मिटता जाता है उतना आत्मा और लाइट होती जाती है। और धीरे धीरे एक तरफ स्वयं अनुभूति करने तक जाते हैं, फिर इसके बाद आता है कि अब ये लाइट, ये माइट सबको पहुंचे। तो पहले स्वयं इतना पावरफुल सर्च लाइट के स्वरूप में आए तो ये जाएगी दूसरे। खुद ही अगर दीपक टिमटिमाता होगा, सर्च लाइट नहीं बने, तो लाइट हाउस का जो काम है वो नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा जो अभ्यास है निरंतर लाइट हाउस स्थिति में लाने वाला, ये बहुत मदद करता है कि अपने ही कई प्रकार की मन की जो उलझने बोझ बन जाती हैं उनको खत्म करने का। दुनिया के लिए हमने लाइट हाउस बनना है, माइट हाउस बनना है। किसके लिए? रास्ता दिखाने के लिए। दूसरों की अगर कमजोरी है तो वो भी दूर कर सके, इतना माइट हमारे अंदर हो, इतनी शक्ति हमारे अंदर हो कि हमारे एक एक शब्द में वो ताकत भरी हुई हो। तो वो सर्वशक्तिवान बाप के साथ जितना समय व्यतीत करते हैं इस स्मृति में, उसका स्मृति स्वरूप बन के कहो, या तो अपने उस लाइट हाउस माइट हाउस घर के अंदर बाबा के साथ जितना समय रहें, उतना ही मानो आत्मा में बाप समान बनने की शक्ति भी आती है और बाप के समान लाइट हाउस भी बन जाता है। तो वैसे तो कहा जाता नॉलेज इज लाइट, ज्ञान भी लाइट है। लाइट अर्थात जो अंधकार को दूर करे। तो बाबा की ज्ञान को समझने वाली आत्माएं जो है वो सर्वज्ञ आत्मा बन जाते हैं। पूरा ज्ञान रचता और रचना के आदि मध्य अंत का अच्छी तरह से गहराई से समझकर उसको रियलाइज कर लेते हैं तो ऐसी सर्वज्ञ आत्मा एक अंधकार में नहीं रहती कभी, बल्कि दूसरों के कोई भी मन के प्रश्न हो, कुछ भी हो, उसको सेकंड में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि खुद क्लैरिटी है माइंड में। और उन शब्दों के अंदर बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे थोड़ा भी बोलो लेकिन उसमें योग का जौहर चाहिए। तो जितना बाप की याद की शक्ति आत्मा में भरी हुई होगी उतना ही ज्ञान का जो वर्णन है उसके अंदर भी वो शक्ति होगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाइट हाउस और माइट हाउस का तभी कर्तव्य सिद्ध होगा। एक तरफ स्वयं अपना अंधकार दूर करना और दूसरी तरफ दूसरों के लिए निमित्त बनना, रास्ता दिखाने के लिए, वर्षा दिलाने के लिए, इतनी शक्ति भरने के लिए, ज्ञान की गहराई में जाने के लिए भी कहेंगे। ज्ञान को अच्छी तरह से जिस लेवल से बाबा ने समझाया है या जितनी गहराई से बाबा ने समझाया है उसको भी यथार्थ समझने के लिए आत्मा बिल्कुल, जो कल भी सुना था, प्लेन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर जिसको कहें। तो वो क्लैरिटी कहां से आएगी? वो एकदम साफ आत्मा जो जैसा बाबा ने ज्ञान दिया है यथार्थ रीति से, उसमें कुछ भी इधर उधर की मिक्सचर ना हो, वो योग के फलस्वरूप आत्मा जब अपनी कमजोरियों पर भी विजय पाती, योग के फलस्वरूप अपने पुराने संस्कारों को भी मिटा देती है, तभी वो ताकत आती है यथार्थ बाबा के ज्ञान को समझने और समझाने की। तब लाइट हाउस और माइट हाउस का प्रैक्टिकल जो सेवा का कार्य है वो कर सके। तो ये बहुत ही अच्छी बात, इन सु अवसर को जो क्षण मधुबन में मिले हैं तपस्या वर्ष में, इनकी बहुत वैल्यू चाहिए अपने पास, और ये अनुभव अपने साथ सदा रखना, एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का, एक एक दिन का जो भी है, जिसके फल स्वरूप यहां से सेवा स्थान पर जाएंगे तो भी वहां पर भी आपको ये मदद मिलेगी। लेकिन उसको कायम रखने का तरीका क्या? तो जो अभ्यास सुबह को सवेरे सवेरे करते हैं वो मदद करेगा। उस समय विशेष रूप से लाइट हाउस और माइट हाउस बन के बाबा के पास बैठे बैठे बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, कोई मेहनत दूसरी नहीं है, पर इस स्मृति को कायम रखना जरूरी है। और बातें आए भी तो उसको एक सेकंड में फिनिश करने के लिए बस बाबा से यही रू रुहान करके योग शुरू करना, बाबा ये बातें तो आ रही हैं लेकिन अभी तो मैं आपके पास फिर से उसी स्मृति में स्थित होने के लिए बैठा। और जितना जितना स्थिति में जाते हैं उतनी वो बातें खत्म भी हो जाती। और उसके लिए कुछ ज्ञान की भी पॉइंट्स ऐसी अपने मन में रखनी पड़ती हैं समय प्रति समय, लेकिन उनको भी यथार्थ यूज करना। अब वो धारणा की क्लासेस तो बहुत आप लोग सुनते हैं, सुनते रहेंगे, लेकिन विशेष रूप से धारणा की भी गहराई अपने जीवन में लाने के लिए, योग बल नहीं तो धारणा नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण जीवन में योग के अभ्यास का बहुत इंटरेस्ट चाहिए, बहुत रुचि चाहिए। अधिकतर कुमार जीवन में विशेष रूप से किस चीज की रुचि रहती है? एक्टिव रहने की, सेवा करने की। तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई ये ना समझे कि हमें सेवा करनी नहीं, लेकिन उस सेवा को फलीभूत करने के लिए कि उसकी रिजल्ट, बाबा जो कहता है कि थोड़ी मेहनत करो और रिजल्ट ज्यादा मिले, उसके लिए सुबह और शाम विशेष रूप से योग का अभ्यास। यहां मधुबन में आप लोग अभी बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं और देख रहे होंगे कि सुबह को जैसे सुबह का योग शुरू करते हैं, मुरली पूरी होने तक साइलेंस में रहते हैं, आज तो सारा दिन रहे, लेकिन वो भी जो 4-5 घंटा सुबह को लगातार अपने मन को ऊपर रखते हैं, संसार से एकदम उपराम रखते हैं, तो उससे भी साइलेंस का बल बहुत मिलता। ऐसे ही लक्ष्य चाहिए शाम के टाइम के। सारा दिन कारोबार में आएंगे, उसके लिए बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियां तो बताई हुई हैं कैसे कारोबार में आना है, फिर बीच बीच में ऊपर जाना है। वो इसीलिए है कि फिर और आगे कोई ज्यादा इस संसार के अंदर दलदल में ना फंसे हम, कोई कर्मों का हिसाब और ना बने, पुराना चुप्तु होता जाए, और फिर शाम के टाइम पर विशेष रूप से अभ्यास। और रात को सोने समय भी जैसे बाबा के ब्रह्मा बाबा की महिमा सुन रहे हैं ना, नैनों में क्या है, जीवन उनकी क्या है, ऐसा ही फरिश्ता स्वरूप बन करके शाम की जो स्मृति है वो रहे, तो प्रैक्टिकल देखेंगे कि स्वयं को, एक तो स्वयं से साक्षात्कार होना शुरू होता है, दूसरों को बाद में होगा, पर पहले तो स्वयं को ही स्वयं से होता है कि सचमुच मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरा वर्तमान जीवन क्या है और मेरा भविष्य क्या है, बाबा का कैसे वारस बच्चा हूं मैं, और सचमुच जैसा मैं सुनता हूं कि मैं अनन्य रत्न हूं, विशेष आत्मा हूं, पद्मा पद्म भाग्यशाली हूं, सुदर्शन चक्रधारी हूं और डबल ताजधारी बनने वाला हूं, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाला हूं, उसका स्वयं को पहले साक्षात्कार, और स्वयं को होगा तो दूसरों को अवश्य होगा। जितना स्वयं करते रहेंगे उतना ही मन में रुचि आएगी कि मैं इसमें स्थित रहूं, इससे नीचे नहीं आऊं, तो अपने मनसा पर, अपनी वाणी पर, अपने नैनों पर स्वतः ही कंट्रोल होता जाए, तो फिर लगेंगे चैतन, हां चलते फिरते लाइट हाउस, माइट हाउस। अगर ब्रह्मा बाबा की जीवन को सामने रखते हैं, जितना ही बाबा के द्वारा शिव बाबा ने इतना ऊंचा सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दिया, इतना नशा चढ़ाया, तो बाबा उसको उसी रुहाब से वर्णन करते हुए जब कोई उनसे मिलते थे, वाणी के अंदर तो हम सुनते ही हैं पर पर्सनल भी, लेकिन उसके साथ साथ ब्रह्मा बाबा की जीवन की विशेषता एक जो वाणी के अंदर बाबा अनुभव अपना सुनाते रहे हैं, जो अभी भी सुनते हैं हम, साइलेंस में इंटरेस्ट बहुत, क्योंकि साइलेंस में जब मन जाए तो शिव बाबा के समीप मन टिके जाकर, और शिव बाबा का जो यथार्थ अनुभव वो आत्मा करे, और जितना वो अनुभव करे उतना बाप समान बने, ये इंटरलिंक्ड है सर। इसके लिए बाबा की रुचि हम लोग शुरू से जब से संपर्क में आए देखते, तो जैसा हम बाबा की जीवन का वर्णन सुनते हैं, अपने सामने अब दादियां मिसाल हैं, उनको देखते हैं, दादा विश्वरत्न को देखो कभी, बहुत साइलेंस में एकदम, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कुमार लाइफ में एक्टिव जो है वो ना रहो, पर एक्टिव में भी दिव्यता आ जाए, इतनी दिव्यता जो इतने हर एक चाहे कि ऐसे एक्टिव बच्चे हमारे पास हों तो कितना अच्छा। तो ऐसे अपने साथ थोड़ी बात भी करनी होती कि अपने पुरुषार्थ में क्या नवीनता लाई जाए, क्या उसके अंदर गहराई लाई जाए, क्या नए रेजोल्यूशन अपने पास रखें, और रोज की अपनी इवेल्युएशन चाहिए, जिसको चार्ट कहते हैं, वो और कुछ नहीं है लेकिन अपना ही सारे दिन का एक प्रकार से वैल्यूएशन करते कि हमने सारे दिन में जो पूरा टाइम हमारा सबसे वैल्यूएबल टाइम ये पुरुषोत्तम संगम युग का वो कैसे बिताया। जितनी बाबा को इसकी वैल्यू है हमारे जीवन की, हमारे समय की, हमारे संकल्पों की, उसी हिसाब से हमने बिताया या नहीं। तो जितना जितना इस साइलेंस की गहराई में जाएंगे उतना उसकी भी वैल्यू मन में रहेगी। और उसकी रिजल्ट क्या होगी? जो रिजल्ट हम चाहते हैं अपने जीवन की, वो प्रैक्टिकल अनुभव होती रहेगी। खुशी में आ जाएंगे, अति इंद्रिय सुख में रहेंगे, कोई कंप्लेंट्स नहीं रहेंगे। और इसमें भी बाबा ने तो भिन्न भिन्न तरीके से कई प्रकार से समझाया हुआ है, लेकिन उसमें देखा गया है कि कुछ समय ऐसे हैं 24 घंटे के अंदर जब विशेष रूप से कुछ अनुभूतियां हो सकती, जैसे सुबह का टाइम है, अमृत वेले का समय है, तो उस समय विशेष रूप से निराकारी स्थिति का स्वरूप जो है वो विशेष अनुभव होता है, जो और समय में दिन में कम होगा, क्योंकि एक बार संकल्प शुरू हो गए ना मन के दूसरे तो प्लस माइनस वो सब होते होते वो फिर ब्रेन दूसरा हो जाता है और उसका रिफ्लेक्शन फिर अपना काम करता है। तो आराम करके जब उठते हैं तो एकदम सारा ही सिस्टम जो है ना वो पहले से ही निराकारी स्टेज में है, और इसलिए सुबह का अभ्यास जो है आपको निराकारी स्थिति का अनुभव कराने में बहुत मदद करेगा। उसमें कुमार लाइफ में थोड़ा सा विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है, नहीं तो 2-3 दिन विशेष रहेगा, 4 दिन फिर लगेगा थक गए। लेकिन बाबा ने युक्ति क्या सिखाई कि 4-5 दिन चाहे अलार्म रख करके भी उठो, अभ्यास करो। जिस समय अलार्म बजे, अलार्म को एक तो बिस्तर से दूर रखो, नहीं तो उधर ही बंद करके फिर सो जाएंगे, और उठ करके अलार्म बंद करके फिर बिस्तर पर नहीं आओ। इतने तक बाबा ने तो कहा अगर पहले 2-3 दिन झुटका भी आए तो कोई हर्जा नहीं। अभी तो तपस्या वर्ष में तो ऐसी बात ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ हो भी ऐसा तो उसका फिक्र ना करके पहले 3-4 दिन इस तरह से रहेगा, उसके बाद जो आनंद आने लगता है तो फिर खुद मन होता कि हम उठे अब। तो ये विशेष रूप से सुबह का टाइम, अमृत वेले का टाइम, अपने पास लक्ष्य चाहिए कि मैं कम से कम आधा पौना घंटा निराकारी स्वरूप में बाबा के पास बैठ करके पूरा जो फाइनल स्थिति आत्मा की प्राप्ति किया उसके अनुभव में जाए। संपन्न बन के जब वापस जाएंगे तो कौन सी स्थिति होगी? फिर संपूर्ण लाइट हाउस माइट हाउस होंगे ना, भले वहां पर वर्णन नहीं होगा लेकिन वो अनुभूति तो अंदर में रहती है। तो उस समय विशेष रूप से निराकारी स्थिति का अभ्यास चाहिए। और शाम का जो टाइम है इस समय फरिश्ता स्वरूप का सहज होता है, निराकारी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन एक प्रकार से ये कहावत है कि शाम के टाइम, ये सनसेट टाइम होता ना, इस टाइम पर फरिश्ते जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो फरिश्ते और कहां से आएंगे? कौन से फरिश्ते? बाबा के बच्चे ही है ना सभी। तो वो अपना फरिश्ता स्वरूप क्या है उसका भी अनुभव सहज होता है शाम के टाइम। और फरिश्तों का काम क्या है? स्वयं लाइट स्वरूप रहें, उड़ने वाले बने और दूसरी आत्माओं को मदद करने के लिए उड़ें, क्योंकि सारे दिन की दिनचर्या के बाद अनेक आत्माएं कर्मों के हिसाब के कारण दुखी होते हैं, तो शांति देने के लिए शांति दूत सैर करते हैं। इस तो ऐसा अपने पास लक्ष्य रख करके जब अभ्यास करेंगे तो पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व क्या है। और हर बात की जैसे सीजन की एक मदद होती है, इस समय के अनुसार कैसे मदद मिलती है एक तो पुरुषोत्तम संगम युग के कारण, फिर उसके बाद बाबा जिस तरह का प्रोग्राम देते हैं, तपस्या वर्ष के अंतर्गत इस समय हमको क्या मदद मिलती, कैसे हमारी कई प्रकार की जो अपने हिसाब किताब हैं वो स्वतः ही खत्म होते जाते, लाइन क्लियर होती जाती, सहज होता जाता। तो जितनी लाइन क्लियर, जितना सहज होंगे उतने लाइट होते जाएंगे ना। इसलिए विशेष रूप से सुबह शाम का वापस जाने के बाद ऐसा प्रोग्राम जरूर रखो कि जिससे ये जो आप अभ्यास करके जाएंगे यहां, इसको आप मल्टीप्लाई करें, सिर्फ कायम रखें इतने तक नहीं, लेकिन जब तपस्या वर्ष पूरा हो तो दूसरे जब अपने अवस्था का वर्णन करें कि कहां तक पहुंचे हैं, तो आप फिर उस समय अपने आप को उनसे पीछे ना समझें, उनसे आगे जा सको तो सबसे बढ़िया, कम से कम नहीं तो साथ तो होने चाहिए। इसलिए अभी कुमारों को विशेष रूप से तपस्या वर्ष में एक बात जरूरी करनी है, वो कौन सी एक बात है, उससे बहुत लाइट हो जाएंगे। कौन सी जी? वेस्ट को बेस्ट बनाना, बचत करना, लेकिन वो भी कब हो सकता है? सबसे बुद्धिवान कौन है? बुद्धिवानों का बुद्धिवान बाबा है ना, तो अपनी बुद्धि का सरेंडर बाबा को कर दीजिए। कुमारों को बहुत मांगा था कि हम सरेंडर हो जाएं, आता है ना, तो सबसे पहले बुद्धि का सरेंडर तो करो। बुद्धि का सरेंडर का मतलब ये नहीं बुद्धू बन जाओ, लेकिन सरेंडर माना किसको सरेंडर? बाप को सरेंडर, बुद्धिवानों के बुद्धिवान को सरेंडर। तो सरेंडर करने से बाबा की बुद्धि जो है, बाबा की जो बातें हैं, बाबा की जो ज्ञान की गहराई है, वो उसके अनुसार बुद्धि चले, फालतू नहीं। तो जितना सरेंडर बुद्धि होंगे उतना लाइट हाउस और माइट हाउस ज्यादा बने। कोई भी बात आए फट से बाबा को सामने लाओ, चाहे निराकारी रूप में लाओ चाहे अव्यक्त रूप में लाओ, एक सेकंड में बाबा को वर्णन करके उसको सरेंडर कर, अच्छी भी और जो कोई नेगेटिव आए वो भी बाबा को। आपने सफलता पाई तो भी मन में यही आए, बाबा आपने कितना अच्छा ये सफलता का वरदान दिया है और इसके फलस्वरूप हम इसमें सफल। अपने पुरुषार्थ में भी जो सफलता है वो भी सरेंडर, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई कर। और दूसरा है कि ये दिन और मास नहीं गिनती करो कभी। एक होता है कोई कोई जब बहुत अच्छी तरह ज्ञान समझते हुए आगे बढ़ते हैं ना, फिर चिंता में पड़ जाते हैं, पहले आते तो कितना अच्छा होता। नहीं, बाबा ने कहा है बच्चे पहले भी आए थे, कोई हिसाब किताब के कारण गए होंगे कहीं, फिर से आ गए, जब भी आए वही उसी को ही अहो सौभाग्य कहना। तो जितना बाबा को सरेंडर बुद्धि करेंगे उतना साथी बन जाएंगे बाबा के। मुरली में था ना बाबा को साथी बनाने की बात, या बाबा का साथी बनने की बात, वो कैसे बनाएंगे? जब दो दोस्त होते हैं ना, तो दोस्ती में आपस में एक दो की बात सहज मान लेते हैं, होता है नहीं? चाहे बात ठीक ना भी लग रही हो तो भी कहेंगे ठीक है भाई तुम कहते हो तो ऑल राइट। तो खुदा को दोस्त बनाना, खुदा दोस्त की बात मुरली में सुन रहे थे ना, उसको सहज दोस्त बनाने का तरीका ये है, जो भी मन में आए सेकंड में बाबा को वर्णन करके खुदा दोस्त को बताया और श्रीमत जैसे अंदर ही अंदर ली। जैसे बाबा को याद करेंगे तो बाबा की वाणी में से, बाबा की श्रीमत में से क्लियर अंडरस्टैंडिंग अपने मन में आ, तो फिर गाड़ी बिल्कुल ठीक चलेगी, कहीं रुकेगी नहीं, फास्ट चलेगी। और उससे फास्ट चलने से अपना क्या कहते हैं उसको, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, निश्चय बढ़ता जाए स्वयं में। बाबा में तो निश्चय है, तब तो मधुबन में आए हैं, लेकिन विशेष रूप से कि मैं आत्मा ऐसा लाइट हाउस माइट हाउस या विजयी आत्मा हूं, اس کا کانفیڈینس جتنا جتنا آگے بڑھتے جائیں گے وہ آتا جائے. اور فکر نہیں کرنا ہے. کوئی نمبروں کا فکر کرنے لگتے ہیں, پہلے 8 میں آنے کی بات, 108 میں آنے کی بات, پھر سوچیں گے پہلے دادیاں بیٹھی ہیں اور بڑے بھائی بہن, ہمارا نمبر کہاں لگنے والا ہے. تو ایسی ایسی باتوں میں ٹائم ویسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بابا نے اتنا اچھا بولا ہے, بچے ہر ایک یہی سمجھے میں نمبر 1 آنے والا ہوں. بس تو نمبر 1 آنے والے کی کوالیفیکیشن کیا ہیں, اس کی کیا وشیشتائیں ہیں, اس کی کیا گن ہیں, اس کا کیا کرتویہ ہے, اس کو دھارن کرتے جائیں گے تو نمبر 1 آئیں گے, صرف کہنے سے سوچنے سے نہیں. تو ایسے ایسے اپنی بدھی کو گہرائی میں لے جانے کے لیے بھی جتنا بابا کے ساتھ من لگا کر کے, ہلکے ہو کر کے, لائٹ سوروپ بھی اور لائٹ ہاؤس بھی دونوں ساتھ ساتھ انبھو کرے, اتنا مزہ بھی آئے گا لائف میں, لیکن ساتھ ساتھ بہت بڑا کاریہ لے کر کے چلتے ہیں. کون سا لائٹ اور لائٹ ہاؤس اور مائٹ ہاؤس کس کے لیے؟ ستھاپنا کے کاریہ کے. اپنی راجائی ستھاپن کر رہے ہیں, بہت مہان کاریہ ہے, بہت بڑا کاریہ ہے, وشال کاریہ ہے, اس کے کارن گمبھیرتا بھی رہے. اوم شام. تو ابھی سبھی کس ستھتی میں چلیں گے؟ مائٹ ہاؤس ستھتی میں لائٹ ہاؤس آٹومیٹک آ جاتا ہے. سوریہ اتنا تیکھا ہے نا, تو اس میں لائٹ بھی ہے اور مائٹ بھی ہے. تو بابا نے کہا ہے اپنے آپ کو ماسٹر گیان سوریہ سمجھ. لائٹ اور مائٹ ہاؤس کی ستھتی کا ایک ساتھ انبھو کرنا ہے تو یہی من میں رکھو کہ بابا آپ گیان سوریہ ہیں اور آپ کی سنتان میں آتما, ماسٹر گیان سوریہ, ایسے شکتی شالی اور ایسے چمکتے ہوئے اس انبھو میں چلے جائے. انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ کیا بالکل ایسی ستھتی جس میں کوئی سنکلپ نہ رہے, اس میں من کو ٹکانے سے وہ سائلنس پاور اس میں آتی ہے یا نہیں. دوسرے سب سنکلپ تو ختم ہو جاتے پر یہ سنکلپ تو رہے گا. کون سا؟ سوئم اور بابا کا تو رہے گا. تو اسی میں سٹیبلائز کرنے سے سائلنس پاور کا ارتھ کیا ہے؟ سائلنس پاور, پاور تو ملتی ہے سورس سے. سورس سمجھتے نا, جہاں پاور ہاؤس کہو یا اس کا سورس کہو, تو سورس تو سرو شکتیوان باپ ہے. تو سائلنس میں مائنڈ اور طرف سے ہٹ کے اس سورس کے ساتھ جب لگتا ہے مائنڈ اور انٹلیکٹ, تو شکتی ملتی ہے. صرف مائنڈ کو تھاٹ لیس کریں گے اور اس کے ساتھ نہیں جوڑنے کا ایم رکھیں گے تو بھی پاور نہیں آئے گی. ہاں, دوسری باتوں سے مائنڈ ہٹ جائے گا. جیسے نیند کرتے ہیں نا جس سمے, تو گہری نیند میں یہ ستھتی ہوتی ہے جو لکھی ہے. تو اس سمے گہری نیند میں کسی کو وہ انبھو نہیں ہوتا کہ ہم یوگ میں ہیں, اور دوسرے بھی وچار ختم ہوتے ہیں. تو اس سمے ریفریش تو ہوتے ہیں فزیکلی مینٹلی, لیکن یوگ کے دوارا جو شکتی کی بات ہے, بابا سے سرو شکتیوان سے جو پاور آف سائلنس, اس سمے نہیں ملتی. اس لیے یوگ کے سمے وشیش روپ سے سنکلپ رکھتے ہیں ہم, فائنل ستھتی کی نشانی کیا ہوں گی؟ سوئم کو فیل ہوگا کہ اب ہم فائنل ہو گئے. ایک تو اس کی نشانیاں بابا نے ساکار مرلی میں بھی بتائی ہوئی ہیں کہ سوپن تک کوئی بھی نیگیٹو, کوئی بھی خراب خیال تک نہیں آئے گا سوپن تک. شبھ ہی شبھ, اور کرم اندریوں پر پورا کنٹرول ہوگا, اور نرنتر شیو بابا کی یاد ہوگی. یہ تین نشانیاں. मेरे से पूछा है कि आपका परिचय दीजिए, तो मेरा नाम सबको पता ही है, निर्वैर। मेरी उम्र पूछी है, एक विचित्र अनुभव है कि ज्ञान में जिस उम्र से आते हैं ना, उसके बाद उम्र बढ़ती नहीं। तो 20 साल की उम्र में आए थे ज्ञान में, अभी तक 20 ही लगती है। शरीर वैसे 52 साल का है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो ऐसी है ना, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, उसमें वही एक उमंग रहता है। बता दिया मैंने, पूछा ज्ञान में कब आए, 1959 में। फिर पूछते हैं कि इतना जो ज्ञान की सेवा कर रहे हैं तो बिना टेंशन के कैसे करते हैं, तो उसका उत्तर मैंने दे दिया कि जब बुद्धि सरेंडर बाबा को कर देते हैं ना, तो फिर टेंशन हमारे लिए रहती नहीं। वो भक्ति में भी कहते हैं करे करावे आपे आप, अब तो प्रैक्टिकल कर्ण करावन हर बाप है, कदम कदम पे बाबा की श्रीमत लेकर और आगे करते रहते, पर्सनली भी, मुरली द्वारा भी और योग द्वारा भी, और फिर साथ में जो निमित हैं बड़े उनसे राय लेकर। इसलिए टेंशन की बात कोई नहीं, लेकिन हाँ, टेंशन ना हो उसके लिए अटेंशन जरूर रखना पड़ता है। और उसका एक सहज सरल तरीका, चाहे कोई भी हो, जो मैंने अभी तक पाया है, कि सुबह के टाइम अच्छी तरह से बाबा के पास कुछ समय योग युक्त होकर, खूब आनंदित होकर, और बाबा की एक मुरली, एक पूरी नहीं पढ़ सके तो आधी पढ़ लें सवेरे, योग पूरा करते फिर उसके बाद बाकी कारोबार में लगें, तो वो सारे दिन के लिए टेंशन फ्री माइंड कर देता है, क्योंकि बहुत खुशी में मन आ जाता है और कई सारी बातों के उत्तर होते हैं उस वाणी के अंदर, जो समय के अनुसार एन जिसको कहते हैं ना, वो ग्रंथ का वाक मिल जाता है। तो ये तो आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर। हाँ, ये लिखा है कि जब आप ज्ञान सूर्य के सामने बैठे हैं तो बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट तो नहीं उस समय देखेंगे। तो उस समय जब विशेष रूप से ज्ञान सूर्य का संकल्प करते हैं, तो वही पॉइंट ऑफ लाइट जो है वो थोड़ा एक्सपेंडेड होता है, सूर्य समान जैसे फील करेंगे। तो विजुलाइज तो जरूर करते हैं, ऐसा नहीं कि विजुलाइज नहीं करेंगे, बल्कि बाबा और हम एक साथ जैसे एक ज्ञान सूर्य के अंदर तीनों होते हैं, ऐसा फील करते हैं। अव्यक्त अवस्था, बिंदु रूप, बीज रूप में क्या अंतर है? तो बिंदु रूप का तो निराकारी स्थिति का आपको बता दिया कि उस समय व्यक्त और अव्यक्त दोनों के भाव से परे चले जाते हैं। अव्यक्त है जो व्यक्त में होते लेकिन जैसे लाइट के फरिश्ते हैं, ऐसी फीलिंग रहती है, मन बहुत हल्का रहेगा लेकिन एकदम निराकारी स्वरूप नहीं। और बिंदु रूप और बीज रूप दोनों एक ही। हम मस्तक के द्वारा बाबा का परिचय कैसे दे सकते हैं? बाबा को मस्तक में बिठा लो, उस समय बाबा को आमंत्रित कर लो, बाबा आप आइए, ये आपके बच्चे सामने बैठे हैं या सामने आए हैं, आप स्वयं ही इनको दृष्टि दे दो, तो बाबा एक सेकंड में आकर के अपना कार्य करके चले जाएंगे। इस तपस्या साल में, तपस्या में सबसे बड़ा विघ्न है निंद्रा। तो निंद्रा जीत बनने का पुरुषार्थ क्या है, सहज और सरल युक्ति बताइए। देखो, माफ कीजिएगा, सहज सरल युक्ति है कि जिस समय सोने का समय है उस समय आराम कीजिए। और जिस समय तपस्या का टाइम है उस समय तपस्या कीजिए। अब कई बार तपस्या की चिंता में रात के 12 एक बजे तक बैठे रहेंगे और फिर आप 3-3.5 बजे उठ करके योग में बैठेंगे तो नेचुरल है कि आपको शरीर को जो आराम चाहिए वो मिला नहीं पूरा, तो फिर निंद्रा आएगी। इसलिए सहज करने का तरीका है, कोशिश करिए 10-10.30 बजे सो जाइए, तो अपने आप 5-6 घंटे के बाद फ्रेशनेस आ जाती है, उठने को मन होता है। और दूसरा है कि जब सोने का समय है तो उस समय माइंड हल्का होना चाहिए, चिंता में नहीं सोना। अगर चिंता में नींद करते हैं तो नींद आती नहीं। और चिंता किस बात की, एक तो ये चिंता नहीं करना कि नींद जल्दी आ जाए, बल्कि नींद निंद्रा जीत माना क्या कि जब आप चाहें तो नींद को ला सकें। तो उस समय सब बातों को एक तरफ करके बाबा आपके पास आकर के मैं तो आपके गोद में सो रहा, ओम शांति, गुड नाइट, बस। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए नींद करने के, 1 सेकंड में चले जाए नींद में, उसको कहते निंद्रा जीत। ये नहीं कि निंद्रा आए ही नहीं उसको निंद्रा जीत कहे। और जिस समय उठना है वो बाबा को उसी समय संकल्प करके, बाबा सुबह इतने बजे उठना चाहता हूं और अब आपके पास आ रहा हूं, बाबा अपने आप उठा देगा। और फिर भी नहीं तो बताया ना, अलार्म लगा दो, लेकिन ये सहज। और दूसरा है कि ये चिंता उस समय नहीं करना रात को कुछ हो ना जाए, ये चिंता होगी तो भी नींद ठीक नहीं होगी, सब बाबा को दे करके सो जाओ। तो बाबा आप ही जिम्मेदार है, आप ही सब संभालेगा, सब ध्यान रखेगा, आपका भी, आपकी प्रॉपर्टी का भी। ठीक है, जिसने प्रश्न लिखा संतुष्ट है। अच्छा, बाबा कहते अमृत वेला, फरिश्ता स्थिति, एंजल स्टेज का अनुभव करें, कभी कहते हैं लाइट और माइट का अनुभव, और कभी कहते सर्व संबंध बाप के साथ, तो क्या इस शॉर्ट टाइम में क्या क्या कर सकते हैं। तो ये तो बाबा ने वैरायटी आपको दिया है कि किसी दिन एक अनुभव करो, किसी दिन दूसरा करो, किसी दिन तीसरा करो, सब एक साथ थोड़े टाइम में करने की जरूरत नहीं है। एक दिन बिल्कुल बीज रूप करो, एक दिन बिल्कुल लाइट हाउस और माइट हाउस का करो, एक दिन बिल्कुल फरिश्ता स्वरूप का करो, तो कम से कम अनुभव ही एक बार एक एक के बन जाएंगे ना, फिर सबको एक साथ करना बड़ा इजी लगेगा। जैसे देखो शांत स्वरूप का, प्रेम स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, जो आत्मा के पहले पहले गुण है, तो उसको भी जब योग शिविर कराते तो योग शिविर करने वालों को पहले पहले क्या सिखाते हैं कि भाई पहले सिर्फ शांत स्वरूप का करो, माइंड जब तक शांत नहीं तो दूसरा कहां से करेगा। फिर उसके बाद कहते हैं प्रेम स्वरूप का करो, फिर प्रेम स्वरूप के बाद कहते हैं अभी प्रेम का फल तो ऑटोमेटिक है आनंद, तो आनंद स्वरूप का करो, जब आनंद स्वरूप में फिर कहते हैं अभी सर्वशक्ति स्वरूप का करो। इसी तरह से एक एक स्थिति का प्लानिंग करके, विचार सागर मंथन करके, उस स्वरूप में स्थित होके पूरा टाइम एक में रहो, एक दिन एक में रहो, दूसरे दिन दूसरा करो, तो एक हफ्ते में कितने कर लेंगे, एक महीने में कितने कर लेंगे, बल्कि फिर उसके बाद रिपीट करना पड़ेगा, तो फिर उसकी और गहराई में जाएंगे। और जब चाहेंगे सब एक साथ भी हो जाएंगे, क्योंकि स्वरूप अनुभव करने वाली आत्मा तो एक ही है ना, उसने जब एक एक का कर लिया तो एक साथ भी कर सकते। और सबसे बढ़िया बात यह होगी, आप देख लेना, जब सर्व शक्ति स्वरूप में या लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति में जाएंगे, उसके बाद ये बाकी सारी स्थिति ऑटोमेटिकली आपको अनुभव होगा, अति इंद्रिय सुख भी अनुभव होगा, फरिश्ता रूप भी अनुभव होगा, स्वतः होगा, और उसका असर सारा दिन तक भी रहेगा। अच्छा, स्वप्न में विकारों का वार क्यों होता है, इनसे बचने का उपाय क्या है। तो इसका एक सिंपल सी बात है कि एक तो सारे दिन की जो दिनचर्या है उसमें अगर आपने विशेष रूप से कुछ ऐसी बातों में दिलचस्पी रखी तो उसका असर माइंड पे रहता है, वो स्वप्न में आएगा, इसलिए वार होता है। दूसरा है, अभी तक पुराने संस्कार जो हमारे हैं वो मिटे नहीं हैं, तो वो कोई ना कोई किसी ना किसी समय वो भी वार कर सकते हैं। और उसका बचने का तरीका तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि सुबह और शाम की दिनचर्या को थोड़ा योग युक्त ठीक से सेट कर लेंगे तो उससे इतना अति इंद्रिय सुख में रहेंगे कि इन बातों से दूर हो जाए। समस्या कौन सी आएगी, हर एक की अपनी समस्या अलग अलग आती है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही समस्या सबके सामने आएगी। किसी को कोई घर की समस्या होगी, किसी को अपने संस्कारों की समस्या होगी, किसी को कोई अपने कर्म के हिसाब किताब की समस्या होगी। लेकिन निंद्रा जीत बनने का तो तरीका आपको बता दिया ना कि जल्दी सो जाओ तो जल्दी उठेंगे। विनाश कब होगा, इसके इस पर आपके पर्सनल विचार क्या हैं, कृपया डिटेल में बताना जी। नहीं, अच्छा प्रश्न तो अच्छा है, पर्सनल विचार तो जान सकते हैं, क्योंकि ये विनाश की पॉइंट ने ही हम लोगों को पुरुषार्थ में तीखा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हम सब जानते हैं, जब बाबा ने उसका साक्षात्कार करवाया है कि विनाश होना है, तो साक्षात्कार के बाद प्रैक्टिकल भी होना है। अब उसके लिए बात है कि भाई स्थापना कितने टाइम में हो जाएगी, 9 लाख देवी देवता कितने टाइम में तैयार होंगे। अभी कुछ वर्षों से तो देवी देवता बढ़ नहीं रहे, जिनके ऊपर बहुत उम्मीद थी कि ये तो बनने वाले हैं, उनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, इसलिए बाबा को तपस्या वर्ष डिक्लेयर करना पड़ गया। तो जैसे ही स्थापना का कार्य पूरा होगा इमीडिएटली उसके बाद विनाश होगा। ये मेरा पर्सनल विचार नहीं, बाबा के भी विचार हैं और मैं भी यही समझ पाया कि अभी तक 9,16,108 देवी देवता तैयार नहीं हुए जी, 3 लाख के करीब हुए हैं, हैं जी। तो इसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी अपनी स्थिति बना के कुछ ईच वन टीच वन भी करें तो चलो मानो एक साल में एक एक तैयार हो जाए, तो 3 लाख अगर एक एक तैयार करे तो 6 लाख हो जाए एक साल में, फिर दूसरे साल में 12 लाख हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है, बाबा कहता है नए नए पत्तों को माया भी जल्दी जल्दी लगती है, तो जितने तैयार करते हैं उसके आधे तो झड़ जाते हैं। और किसी धर्म स्थापना में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन ये जो पतित से पावन बनाने की है ना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बाबा को भी बहुत मेहनत लगती है, और बाबा के हैंड्स जितने हैं ना, राइट हैंड, सबको मेहनत लगती है। इसलिए कई बार सुनाते समाचार के, इतना सबको समझाते, इतना मेला करते हैं, इतनी ये प्रदर्शनी करते हैं, फिर भी निकलते बहुत कम। और अभी आपको बताएं कि तपस्या वर्ष की जो रिजल्ट है, जितना ही योग का अभ्यास सब तरफ चल रहा है उतना ही नए नए बाबा के बच्चे ज्यादा निकल रहे हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी अगर विनाश भी लाना है तो उसके लिए भी तपस्या ही काम करने वाली। फिर भी पर्सनल मेरा विचार ये है कि हमारे जो बाबा के चित्र है ना, गोला का चित्र है और हैं, तो उसमें कलयुग का अंत जो दिखाया हुआ है वो सन 2000 तक दिखाया, समझ पाए ना। अब एकदम से विनाश नहीं होता है कि एकदम आज शुरू हुआ और आज सारी दुनिया खत्म हो गई, विनाश तो हो रहा है कई वर्षों से धीरे धीरे धीरे, हाँ मूल्यों का विनाश और उसके साथ में हेल्थ का विनाश और उसके साथ में इकोनॉमी का विनाश धीरे धीरे होता जा रहा है, और उसके कारण लोगों के अंदर माइंड बिल्कुल परवर्टेड उल्टे हो गए हुए हैं, इसलिए आतंकवाद बढ़ना, समस्याएं बढ़ना, ये सब होता जा रहा है। तो ये किसकी निशानियां है, सिर्फ बॉम्ब गिरने से ही विनाश नहीं होता है। तो इस हिसाब से अधिक कितने साल लगेंगे, अभी 91 है, जितनी तेजी से वातावरण चेंज हो रहा है इसके अनुसार तो मेरा ख्याल है सन 2000 तक मुश्किल से ही चल पाएगा। ठीक आया समझ में जिसने लिखा या और डिटेल चाहिए? अच्छा ये भाई भाई ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि इन सब बातों को छोड़ दीजिए, केवल केवल लाइट और माइट हाउस की स्थिति का अभ्यास करिए। अच्छा इतनी सर्विस में बिजी रहते भी आप कौन सी स्टेज अपनाया है वो आपकी स्थिति को एक्यूरेट रख सकती है? तो ये तो मैंने पहले सुनाया कि भाई एक बीच बीच में याद दिलाते हैं कि हम बाबा आपकी सेवा में हैं, जो कुछ आपने कराया उसके लिए आपको थैंक्स, आगे जो कराना चाहते हैं हमारा माइंड आपके साथ है। ऐसा समय आएगा कि बाबा कहते हैं ऐसा समय आएगा कि खाना खाने लायक नहीं रहेगा, बाबा ने ये नहीं कहा है भाई, खाना खाने का समय नहीं मिलेगा, आप इतने बिजी हो जाएंगे। बाकी ये है कि पॉल्यूशन हो जाएगा उसके कारण, वो तो सब जानते हैं। तो ब्राह्मण बच्चों की स्थिति किस तरह की होगी, वे किस बल के आधार से जीवित रहेंगे, योग बल से, और उसके साथ में जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे उसको और स्वच्छ बना के खाएंगे। निराकारी स्थिति में अधिक समय रहने के लिए क्या क्या संकल्प चलाने होते हैं? बहुत संकल्प नहीं चलाने होते, यही संकल्प के मैं निराकारी आत्मा हूं, बाबा आपके पास बैठा हूं, बीच बीच में याद दिलाना पड़ता अपने आप। याद ब्रह्मा को करनी है या शिव बाबा को, दोनों को एक साथ कर लेना तो सहज लगेगा, एक तरफ बाबा एक तरफ मामा, बीच में आप। अच्छा बल रूह रिहान से अधिक मिलता है या शिव बाबा की याद से? रूह रिहान से माइंड स्थित हो जाता है, फिर याद में रहने से बल ज्यादा मिलता है। और याद कैसे करनी है, इतना सारा समझाने के बाद भी स्वयं को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। अगर आपके अनुभव में ये है कि सन 2007 साल तक विनाश हो जाएगा तो ग्लोबल हॉस्पिटल किसके लिए बना रहे हैं? ब्राह्मणों के लिए, ताकि शांति से जाएं, कोई तकलीफ ना हो। अच्छा एडवांस पार्टी में जो आत्माएं गए हैं वो सब कहाँ रहते हैं? बहुत अच्छे घरों में जन्म लिया है उन्होंने, रॉयल घरों में, और बाबा ने उनका तो बहुत अच्छा रोल बताया है कि जैसे ट्रांजिशन पीरियड जिसको कहते हैं ना, परिवर्तन का समय, तो इधर एक तरफ पुरानी सरकार का वो कार्य पूरा होने पर होगा और नई अभी तैयार नहीं होगी, तो बीच के समय में वो आत्माएं फिर बागडोर अपने हाथ में लेंगी और आपको फीलिंग आएगी कि ये अपने घराने की आत्माएं हैं, उनको भी आपसे बहुत स्नेह होगा लेकिन पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही आत्मा। ये संगम युग में वह सब आत्माएं फिर आएंगे व नहीं, वापस जो एडवांस पार्टी जब कह दिया तो वो वापस ज्ञान लेने के लिए फिर इधर नहीं आएंगे, हैं तो संगम पर ही, लेकिन वो उनका रोल चेंज हो जाता है क्योंकि स्थापना के कार्य को थोड़ा सा विशाल रूप से देखना होता है कि सारे संसार के अंदर सारा ही सिस्टम चेंज हो रहा है, तो उसमें उनका जो रोल है बीच का उसमें वो बिजी रहेंगे, कारोबार को संभालने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। और जब आप श्री कृष्ण के साथ फिर से जन्म लेंगे तो आपके हाथ में बागडोर देने के लिए। 24 घंटों में से कितना घंटा निंद्रा शरीर के लिए जरूरी है? 6-7 घंटा कम से कम चाहिए। हमें दिन में आराम करना इच्छा नहीं रहती, फिर भी दिन में आराम करना अच्छा या नहीं? अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो फिर अच्छा कहां से हुआ? तो उस समय नींद ना करें लेकिन रिलैक्स करें, थोड़ा चेंज चाहिए ताकि माइंड क्रिएटिव रहे, नहीं तो डलनेस आ जाती। विच आर द फोर्सेस बाइंडिंग द सोल इनसाइड द बॉडी? कर्मिक अकाउंट्स। जब तक कर्म का हिसाब किताब खत्म नहीं हुआ है अपने शरीर के साथ और लौकिक संबंधियों के साथ और अलौकिक संबंधियों के साथ, तब तक आत्मा बंधी रहेगी। इसमें प्रश्न ये है कि आत्मा को बंधन में बांधने वाली कौन सी ऐसी शक्तियां हैं? तो जब बिल्कुल फ्री हो जाएगी तो वापस। आत्मा अविनाशी है और उसमें पार्ट भी अविनाशी है, तो विकर्म विनाश भस्म कैसे होते हैं? वो भी अविनाशी होते हैं। अविनाशी है फिर विनाश कैसे हो सकता है? यानी विकर्म, विकर्म का जो संस्कार है वो मिट जाता है। टेल अस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ विश्व किशोर भाई। ब्रीफ हिस्ट्री तो विश्व किशोर भाई, दादा विश्व किशोर, ही वॉज द फर्स्ट मैनेजर। सबसे पहले वो बाबा के राइट हैंड बने, मैनेजर बने, और बाबा ने पूरा उनके ऊपर जिम्मेदारी यज्ञ की दी हुई थी, जो कारोबार आती है ना। और बाबा के जो हमने देखा अपनी आंखों से, ऐसा आज्ञाकारी बच्चा, योगी और वो सब, पर आज्ञाकारी, फेथफुल, और साथ में हर एक के अंदर गुण देखना और खुश होना उससे, और दूसरों को अपने से आगे सदा देखता था, और उसके कारण सब उनको बहुत प्यार करते थे। ये ब्रीफ हिस्ट्री। और बहुत बुद्धि भी बहुत तीखी उनकी, बहुत तीखी। और साथ में एक विशेषता उनकी थी कि जो यज्ञ का कार्य करने जाते थे, बहुत प्यार से जिसके पास जाना, बाबा से मिलके जाना, और बाबा से पहले शक्ति भरनी अपने अंदर, और फिर जाकर के किसी से मिलना तो उसको पहले दृष्टि देनी, बात नहीं करनी, मुस्कुराते रहना, दृष्टि देते रहना, जिसको बाबा कहते मैग्नेटाइज करना, और फिर उसके बाद उनको ऐसा युक्ति से ज्ञान समझा करके और बाबा की जो कार्य होगा वो करवाना, जो बहुत इकोनॉमी से करवाते और बहुत अच्छी चीज फर्स्ट क्लास बाबा को लाके देते। तो ऐसा उनके अंदर बहुत सारी ऐसी विशेषताएं, और जितना प्रिंटिंग आदि का काम वो बाबा का वो करवाते थे, उसमें अच्छी प्रिंटिंग जो बेस्ट हुई है, श्री कृष्ण का चित्र, त्रिमूर्ति, गोला, कल्प वृक्ष, वो उन्होंने करवाया। योग करने के पहले स्वयं को भरपूर समझते हैं, योग में बैठने के बाद स्वयं को खाली समझते हैं। ऐसा है कि इसमें इसके दो साइड हो सकते हैं, जो अच्छी बातें नहीं हो उससे भरपूर हो, और योग करने के बाद वो खत्म हो जाए वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अपनी जो आत्म अनुभूति के जो रस हैं या परमात्म अनुभूति के, पहले वो भरपूर फील कर रहे हो और योग करने के बाद खाली हो जाए, वो तो अच्छी बात नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई करने चाहिए। तो इसलिए ये जो भाव है लिखा हुआ, वो थोड़ा सा समझ करके कि अगर पहले जो है अच्छी बातें नहीं है उससे खाली हो जाते तो अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ऐसे होता है कि योग के बाद खाली हो जाते हैं, इसका मतलब हैवी हो जाते हैं, योग ठीक नहीं कर पाते। तो आज की जो विधि सुनाई आपको, हल्के होकर के उड़ते उड़ते बाबा के पास जा करके अच्छी तरह से अपने आप को भरपूर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा। 8 घंटा योग किस विधि से करें? एक ही निराकारी स्टेज या एक ही फरिश्ता स्वरूप से नहीं कर पाएंगे, तो उसमें 8 घंटे में अटेंशन रखते रखते, बीच बीच में जैसे इधर होता ना ट्रैफिक कंट्रोल का, तो स्वयं ट्रैफिक कंट्रोल करते करते उसको मल्टीप्लाई करते रहे, धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से 8 घंटा नहीं। या तो फिर ऐसा है कि टाइम निकाल करके तपस्या करो, जैसे अभी आज किया। अच्छा, क्या आत्मिक स्थिति योग कहलाएगी? सिर्फ आत्मिक नहीं, बाबा साथ में चाहिए तभी योग कहलाएगी। क्या सुदर्शन चक्रधारी बने तो वह योग कहलाएगा? हाँ, बाबा ने वरदान दिया तो बाबा बुद्धि में आएगा तो जरूर कहलाएंगे कि योग है, उसमें ज्ञान योग कहेंगे उसको। कोई संकल्प एक ही जो दिल खाता है उसको खत्म करना चाहे फिर भी नहीं होता, उसके लिए कौन पुरुषार्थ है जो संकल्प खत्म हो जाए और फिर ना आए? ये तो बहुत गहरा प्रश्न है। उसको अच्छी तरह से दिल से निकालने की, हाँ, एक लगन से صاف صاف لکھ کر کے بابا کے گدی کے نیچے رکھ دینا تو وہ چلا جائے. نشٹو موہا سمرتی لبدا کیسے بنے, آؤ ابھی بنتے ہیں. ابھیاس کرتے کرتے بنیں گے نا بھائی. جتنا جتنا بابا کی یاد کا رس بیٹھتا جائے گا اتنا اتنا لوکک سمبندیوں کا, لوکک باتوں کا, لوکک رسوں کا مور نشٹ ہوتا جائے گا. تو سوئم فیل کریں گے کہ اب تو سچ مچ ہم نشٹو موہا سمرتی لبدا بن گئے. اس کو الٹا دیجئے, پہلے سمرتی لبدا بنیے تو نشٹو موہا بنے گا. پہلے نشٹو موہا بننے کا سنکلپ کرو, نہیں ہو سکے گا. اس لیے سمرتی لبدا پھر نشٹو موہا, سمجھے آپ. سمرتی سوروپ بنتے جائیں گے تو نیچرل ہے دوسری باتوں سے من ہٹ جائے گا. لیکن پہلے سے سوچیں کہ ان سے من ہٹاؤں سب سے پھر میں بابا کو یاد کروں, وہ نہیں ہو سکے گا. ابھی سب باتوں کو یہیں چھوڑ دیجئے اور چلیے بابا کے پاس. اڑتے اڑتے ہوم شانتی.